नमस्कार दोस्तों, मैं हूं JS फोगाट और स्वागत है आपका पॉडकास्ट चैनल चर्चा में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नोटबंदी, एक वरदान या एक अभिशाप। सो कीप लिसनिंग पॉडकास्ट चैनल चर्चा में। 8 नवंबर का दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ठीक रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद 1,000 और 500 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण की यह घोषणा उसी दिन रात आधी रात से लागू हो गई थी। इस ऐलान के बाद कुछ ही देर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोग 500 और 1,000 के नोटों को खर्च करने के लिए बाजार में निकल चुके थे। रात 12 बजे तक लोग सुनारों की दुकान पर थे। बैंकों के बाहर लाइनें लगाकर नोटों को बदलवाने के लिए आम जनता को महीनों तक परेशान होना पड़ा था। बाद में रिजर्व बैंक द्वारा 500 और 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। दोस्तों, क्या होता है विमुद्रीकरण? किन परिस्थितियों में यह लागू किया जाता है? किस मकसद के लिए किया जाता है? और क्या इसको लागू करके हमें अनुकूल परिणाम मिले या नहीं? आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। जब किसी देश की सरकार अपनी पुरानी मुद्रा को कानूनी रूप से बंद कर देती है तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण या डिमोनिटाइजेशन कहते हैं। यह साधारणतः उस समय होता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है और पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा को लाया जाता है। विमुद्रीकरण होने के बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की कीमत नहीं रह जाती। हालांकि सरकार द्वारा पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए लोगों को पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि वे अमान्य हो चुके अपने पुराने नोटों को वक्त रहते बदल सकें। सरकार का ऐसे निर्णय लेने के कई कारण होते हैं, जैसे कि यदि सरकार को नई मुद्रा बाजार में लाना, काले धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने वगैरह वगैरह। काले धन का उपयोग आतंकवाद, अपराध और तस्करी जैसे आपराधिक कार्यों में बड़े पैमाने पर होता है। इस तरह के कामों में लिप्त लोग नगद राशि अपने पास जमा करके रखते हैं। ऐसे में विमुद्रीकरण से सीधे उन पर चोट होती है। बाजार में कई बार नकली नोट प्रचलन में आ जाते हैं। सरकार इन नोटों से पार पाने के लिए भी ऐसे निर्णय लेती है। टैक्स चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन देन को हतोत्साहित करने के लिए भी सरकारें कई बार विमुद्रीकरण का रास्ता अपनाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ही यह कदम उठाया है, इससे पहले भी कुछ देश ऐसा कर चुके हैं। सिंगापुर में जापानी बनाना नोटों को उस समय जारी किया गया जब जापान ने इसका अधिग्रहण किया था। जापानियों के सरेंडर के बाद वर्ष 1945 में इस मुद्रा को बाहर कर दिया गया और फिर सिंगापुर मिंट को अपनाया गया। फिजी में वर्ष 1969 में विमुद्रीकरण को अपनाया था। फिलीपींस के सेंट्रल बैंक ने 1985 में नई डिजाइन वाले बैंक नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया था। वर्ष 2009 में जिम्बाब्वे ने मुद्रा को डॉलर में बदल दिया था। इसके उलट वेनेजुएला में अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई काम नहीं किया गया, इसलिए वहां अब 1 लीटर दूध लगभग 13,000 रुपये में और 1 अंडा 900 रुपये में बिक रहा है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि वेनेजुएला में सामान के बदले नोट गिनकर नहीं बल्कि तोलकर लिए जाते हैं। यह भी काफ़ी रोचक है कि यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने इस तरह का कोई कदम उठाया है। भारत में पहली बार वर्ष 1946 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विमुद्रीकरण को अपनाया था। उस समय RBI ने 500, 1,000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। वर्ष 1954 यानी 8 वर्ष बाद भारत सरकार ने 1,000, 5,000 और 10,000 के नए नोट जारी किए थे। वर्ष 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचु कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया था जिसके चलते नोटबंदी नहीं हो पाई थी। जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बनाकर 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। हालांकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने इस नोटबंदी का विरोध किया था। कई बार सरकार पुराने नोटों को एकदम बंद करने के बजाय धीरे धीरे बंद कर देती है। वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 500 के 2005 से पहले नोटों को विमुद्रीकरण कर दिया था और अंत में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने सरकार की इस घोषणा का समर्थन किया। इसके बाद सरकार 500 और 2,000 रुपये के नए नोट बाजार में लेकर आई। सरकार ने ऐलान किया कि उसने देश में मौजूद काले धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है। आज 2 वर्ष बाद भी यह मुद्दा उतना ही गर्म है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के 2 साल पूरा होने के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। पार्टी ने कहा कि सरकार को यह पता करने के लिए श्वेत पत्र लाना चाहिए कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था और आरोप लगाया था कि मोदी सरकार का यह कदम खुद से पैदा की गई त्रासदी और आत्मघाती हमला था, जिससे प्रधानमंत्री के सूट बूट वाले मित्रों ने अपने काले धन को सफ़ेद करने का काम किया। उन्होंने कहा, नोटबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब लोग हुए हैं। लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे को बदलवाने के लिए कई दिनों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। 100 से अधिक लोगों की लाइनों में मृत्यु हो गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय जिन लक्ष्यों की बात कही थी, उनमें से एक भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर सरकार के इस कदम के खिलाफ 9 नवंबर को दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद यादव और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनीष चतरथ एवं नसीब सिंह तथा पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। आरबीआई दफ्तर के तरफ बढ़ रहे कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और संसद मार्ग थाने ले गई। हिरासत में लिए जाने के बाद मोदी सरकार को तानाशाही वाला कदम करार देते हुए श्री अशोक गहलोत ने कहा कि नोटबंदी से देश के गरीबों और छोटे कारोबारियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और इस कदम से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने एवं लोगों के लिए परेशानी पैदा करने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भोपाल में कहा, नोटबंदी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। यदि कांग्रेस की सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सत्ता में आएगी तो हम सबसे पहले नोटबंदी के घोटाले की जांच कराएंगे। पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार रिजर्व बैंक को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने कहा, नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला है, इससे देश की अर्थव्यवस्था और लाखों जिंदगियों को बर्बाद किया है। उधर प्रधानमंत्री का कहना है कि जो काम दशकों पहले होने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो माँ बेटे रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पर बाहर हैं, वो हमसे नोटबंदी के फायदे या नुकसान पूछ रहे हैं। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इसके फायदे गिनाते हुए ब्लॉग लिखा कि नोटबंदी के बाद करीब 20% टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। दोस्तों, ये हैं विमुद्रीकरण से जुड़े तमाम पहलू। अब सवाल यह है कि क्या नोटबंदी के इंजेक्शन से भारत की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिली है? नोटबंदी के 2 वर्ष बाद भी आज ये सवाल बहुत अहम है। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी CBDT ने डायरेक्ट टैक्सेज के आंकड़े जारी किए हैं। नोटबंदी की वजह से टैक्स व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ा है, काला धन जमा करने और संपत्ति को छुपाने की प्रवृत्ति में कमी आई है। जब सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो इसका मतलब है कि सड़क, रेलवे, बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा और उसमें काफ़ी सुधार होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। हालांकि नोटबंदी के आलोचकों का कहना है कि सारा काला धन तो वापस बैंकों में आ गया, फिर जिस ब्लैक मनी या काले धन को ख़त्म करने की बात कही गई थी वह नोटबंदी के बाद पैसा कहाँ गया। इसका एक मतलब यह भी है कि वो सारा पैसा वापस बैंकों में आ गया है और वो सारा वाइट मनी में तब्दील हो गया है। लेकिन किसी भी विषय पर कोई राय बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि नोटबंदी एक वरदान साबित हुई या एक अभिशाप। आइए एक एक करके कुछ आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। CBDT के डायरेक्ट टैक्स आंकड़ों के मुताबिक IT रिटर्न फाइल करने में 80% का इजाफा हुआ है। जहां 2013-14 में 3,79,00,000 रिटर्न फाइल हुए थे, वहीं 2017-18 में 6,86,00,000 रिटर्न फाइल हुए हैं। नोटबंदी के बाद करीब 1,92,00,000 रिटर्न फाइल ज़्यादा हुए हैं। नोटबंदी के बाद टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2013-14 में जहां 5,27,00,000 लोगों ने टैक्स दिया, वहीं 17-18 में 7,41,00,000 लोगों ने टैक्स दिया। इन विश्लेषणों के बाद 3 प्रमुख बातें सामने आई हैं। नंबर 1, नोटबंदी के बाद 2 वर्षों यानी 2016-18 के बीच पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में 39% का इजाफा हुआ है। नंबर 2, कॉरपोरेट टैक्स में 20% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि व्यापार करने वाले लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा पारदर्शित बरत रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के व्यापारी अपने हिस्से का टैक्स भर के ना केवल सरकारों को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि एक पारदर्शिता को लाकर काले धन व जमाखोरी को भी ख़त्म करने की मददगार साबित हो रहे हैं। नंबर 3, अदर डायरेक्ट टैक्सेज में 1,133%, गौर कीजिएगा, 1,133% का इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नोटबंदी के बाद जो इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम चलाई गई थी, उसके तहत अघोषित आय का खुलासा हुआ, उस पर लगे टैक्स को भी अदर डायरेक्ट टैक्स में जोड़ा गया है, इसलिए इसमें 1,133% का इजाफा हुआ है। वैसे कुल मिलाकर नोटबंदी के बाद डायरेक्ट टैक्सेज में 27.84% का इजाफा हुआ है। नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, POS मशीन और UPI बेस्ड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इससे लोगों को 4 फायदे हुए हैं। पहला फ़ायदा, पैसे का लेन देन कम समय में आसानी से हो रहा है। दूसरा फ़ायदा, नोटों को लेकर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, भारी भरकम पर्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा फ़ायदा, नोटों के चोरी होने, गुम हो जाने, भीगने, कटने फटने का खतरा ख़त्म हो गया है। और चौथा फ़ायदा, अपनी आमदनी का हिसाब किताब करना बहुत आसान हुआ। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि जहाँ नवंबर 2016 में मात्र 90 करोड़ रुपए का कैशलेस ट्रांजैक्शन हुआ था, वहीं नवंबर 2017 में यह बढ़कर 9,640 करोड़ रुपए हो गया और अक्टूबर 2018 तक यह राशि 74,97,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, जहां नोटबंदी से पहले मात्र 90 करोड़ रुपए का कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा था, वहां आज 74,97,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। यानी लोगों में कैशलेस ट्रांजैक्शन की प्रति जागरूकता बढ़ी है। ये सारी ट्रांजैक्शंस ऑन रिकॉर्ड और ट्रांसपेरेंट रहती हैं तथा काले बाजारी और जमाखोरी पर एक कड़ा प्रहार है। अंत में यही कहूँगा कि हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर हमें नोटबंदी का कोई फ़ायदा दिखाई ना दे, क्योंकि यह मुहिम कालाधन तथा आतंकवाद के खिलाफ थी और देश का आम आदमी ना तो काला धन रखता है और ना ही आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो जनसाधारण को कोई नुकसान होने का मतलब ही नहीं। परंतु हाँ, ठीक इसके विपरीत, जो काले धन और आतंकवाद से जुड़े हुए हैं उन पर यह बहुत बड़ी चोट थी जिससे वे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। देश हित में यह एक ऐतिहासिक फैसला था, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।